الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो सूरह अनआम की जो तफसीर चल रही है इस क्लास के अंदर मारफुल कुरान जिल्द नंबर 3 से, तो उसमें हमने कल की क्लास में आयत नंबर 11 तक की तफसीर पढ़ के मुकम्मल कर ली थी। आयत नंबर 12, 13 और 14 की जो अभी तिलावत की गई, तो उनका पहले हम तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर खुलासे तफसीर और फिर मारफुल मसाइल इंशाल्लाह। तो तर्जुमा हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे से यहाँ पर नकल कर दिया है, और उसके जो मुश्किल कुछ अल्फाज थे उनको जो है वो आसान उर्दू में बस कन्वर्ट कर किया है। तो ये हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का ही किया हुआ तर्जुमा है। तो फरमाते हैं कि कुल, कह दीजिए, पूछिए, ठीक है, यहाँ पर कुल पूछिए के मफहूम में इस्तेमाल होगा। लेमन किसके लिए है, ये किसका है, मा फिस समावात वलार्द, मा जो कुछ है, ठीक है, माए मौसूला जो कुछ है, फिस समावात वलार्द आसमानों और जमीन के लिए, ठीक है। तो आप इन लोगों से पूछिए कि किसके लिए है सब कुछ, यानी किसका है, ठीक है। लाम का तर्जुमा आम तौर पे तो लिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसी से उर्दू जुबान के अंदर जो लिए आया ना, तो वो ली, ठीक है, ली, तो वो ये जो है वो हमने उर्दू में बहुत सारी चीजें ऐड भी कर दी, अरबी किसी चीज में फलानी चीज को ऐड कर दिया और एक लफ्ज बना दिया, तो ली था तो उसको लिए बना दिया। तो लेकिन ये जो है वो किसी के उसके लिए भी के जिसका, यानी किस किसकी मिल्कियत है या किसकी जो है वो बिलोंगिंग है, किससे ये बिलोंग करता है। तो अरबी की जैसे कोई किताब होती है तो किताब का जो मुसन्निफ होता है ना, मुसन्निफ का नाम, तो उस मुसन्निफ के नाम से पहले भी ली लगा देते हैं, ठीक है, कि ये उनकी है किताब। हाँ, ये उनके लिए किताब नहीं है कि, यानी ये किताब उनके लिए लिखी नहीं गई है, बल्कि ये उनकी किताब है। तो लिमन मा फिस समावाती वल अर्द, कतब अला नफ्सिही अर्रहमा, कि उसने अपने आप पर रहमत को लिख दिया है, यानी अपने जिम्मे रहमत को कर दिया है अल्लाह ताला ने। क्या मफहूम है इसका, आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, बात होगी इसके ऊपर। लयजमअन्नकुम, जरूर बिल जरूर वो जमा कर देगा तुम सबको। लयजमअन्ना, जमा असल लफ्ज है, कुम जो है वो जमीर है जो कि हमारी सब की तरफ लौट रही है, हमारी तरफ पॉइंट कर रही है, और लाम जो है वो ताकीद के लिए है, और नून जो है वो डबल ताकीद के लिए, सकीला, नून सकीला यानी नून तशदीद वाला। तो जरूर बिल जरूर वो तुम सबको जमा कर देगा, यानी इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना ज्यादा जोर दे करके ये बात फरमाई, जरूर बिल जरूर वो तुम सबको जमा कर देगा, इला यौमिल कियामा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इला तरफ ये डायरेक्शन बताने के लिए होता है, तो यौम कयामा की तरफ, कयामत के दिन की तरफ, इसका क्या मफहूम है आगे पढ़ेंगे। ला रईब फी, नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसके अंदर, कोई शक नहीं। अच्छा, रैप का जो लफ्ज है ना, ये बड़ा अजीब लफ्ज है ये। अच्छा, अरबी जुबान में शक का लफ्ज ही मौजूद है, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी नऊ अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनश शक व शिर्क व निफाक व सूए अखलाक। तो शक का भी तो लफ्ज अरबी जुबान के ही लफ्ज है, तो शक के लिए शक का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, रैब का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? मुफसरीन ने लिखा, रैब जो है ना, ये उस किस्म के शक को कहते हैं कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, बेबुनियाद शक, ला रैब फीह, ठीक है। यानी इसमें जो है ना, वो इस बेबुनियाद शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है और दूसरे किस्म के शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ला रैब फीह अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम, कि वो लोग जो नुकसान में डाल चुके हैं अनफुसहुम, अपने जानों को, अपने नफ्सों को, अपने आप को नुकसान में डाल चुके हैं, फहुम, वो कौन है? बस वो वही है, ला युमिनून, जो के मानते नहीं। किसको नहीं मानते? नबी को नहीं मानते, ठीक है। और जो नबी की नहीं मानते तो वो भी ना मानने वालों में आते हैं ना। जो नबी को नहीं मानते वो तो सिरे से काफिर ही हो जाते हैं, काफिर ही होते हैं। और जो नबी को तो मानते हैं, जी हैं तो ये नबी, लेकिन नबी की नहीं मानते, तो भाई मानने की तारीफ में तो फिर दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। अगरचे के इनका जो है वो निकाह फस्त नहीं होता और इनके लिए जो है वो वाले अहकामात जारी नहीं होते कि मरने के बाद इनको काफिरों की तरह घड़े में फेंक करके आ जाना है और जो है वो इनको विरासत में हक नहीं मिलेगा, और ये काफिरों के ऊपर ये शरीयत के अहकामात जारी होते हैं। जो नबी को मानते हैं तो उनके ऊपर ये वाले अहकाम जारी नहीं होते, उनके ऊपर मुसलमानों वाले अहकाम जारी होते हैं। लेकिन जो नबी की नहीं मानते, ठीक है ना, अपनी मानते हैं या किसी और की मानते हैं, है? बरतानवी साम्राज्य की मानेंगे, चाइनीज साम्राज्य की मानेंगे, या किसी इंडियन साम्राज्य, किसी की भी, जो भी वर्ल्ड पावर्स वगैरह सो कॉल्ड बनती, या ये कि अपने मुआशरे के अंदर किसी दूसरे की मानेंगे, नबी की नहीं मानेंगे, बस बाकी सब की मानेंगे, बाकी किसी की भी मानेंगे सिवाय अल्लाह के नबी के, तो वो बड़े खुश रहते हैं, वो बड़े कामयाबी में रहते हैं, है? कि यहाँ पे जो है खसिरू अनफुसहुम, ये तो सिर्फ को ना मानने वालों के लिए है, ये की ना मानने वालों के लिए तो नहीं है, क्योंकि की ना मानने वाले तो बड़े कामयाब और बड़े इज्जत वाले और बड़े मर्तबे वाले और बड़े मुकाम वाले और बड़े सुकून वाले हैं, जो नबी की नहीं मानते। नहीं, इस आयत में भी खसिरू खसिरू का लफ्ज है। और इवन अगर हम अपने मुशाहदे को भी खाली देखें, तो जो नबी की नहीं मानते वो भी खसिरू अनफुसहुम, उन्होंने भी अपने आप को खसारे में डाल दिया, क्योंकि वो भी जो है वो इज्जत से और सुकून से महरूम ही रहते हैं। खसिरू अनफुसहुम, बस ये वही लोग हैं जो कि मानने वाले नहीं। वलहू मा सकना फिल लैली वन नहारी, और उसके लिए है, यानी किसके लिए? अल्लाह के लिए। हु की जमीर अल्लाह की तरफ दलालत कर रही है। मा सकना फिल लैली व नहार, जो कुछ है या जो कुछ सुकून से है रात में और दिन में, ठीक है। जमाना या तो वो तारीकी के साथ होता है या वो रोशनी के साथ होता है, टाइम, ठीक है। टाइम जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन है कि जी सुबह का वक्त, एक क्लासिफिकेशन है जी दोपहर का वक्त, एक है सपहर का वक्त, एक है मगरिब का वक्त, एक है इशा का वक्त, ये एक क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ लाइट, ठीक है ना, लेवल ऑफ लाइट जो कि वेरी करती रहती है फिर दिन के मुख्तलिफ औकात में। फिर आप क्लासिफिकेशन जो है वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं साल के महीनों में, कि ये जी रमजान का महीना चल रहा है, ये शाबान का महीना चल रहा है, ये जो है वो शवाल का होगा, ये फलाना होगा, ये क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन। और एक जो बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है जमाने की या वक्त की, वो ये है कि या तो रोशनी या तो उजाला, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं, कि ना रोशनी हो ना उजाला हो, कोई तीसरी किस्म की चीज हो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, अल्लाह ताला ने बनाई नहीं, ठीक है। तो जो कुछ भी है, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी है ना, जो एग्जिस्ट करता है, वो सब का सब उसी के लिए, यानी उसी का है, ये वही वाला ली है जो के पीछे लिमंग में जो ली था ना, यही ये वही वाला ली है, सिवाय इसके के लहू हु की वजह से अरब लोग लाम के नीचे जेर की बजाय लाम के ऊपर जबर पड़ते हैं, वरना है ये वही वाला ली। ठीक है, जो तो पीछे बात हुई थी इसके बारे में, यानी उसका है। वहुवा समीउल अलीम, और वो असमी है और अल अलीम है, सब कुछ सुनने वाला है। ठीक है, सब एक साथ बोलना शुरू कर दें तो भी अल्लाह ताला हर एक को अलग अलग सुनने के ऊपर कादिर है, सुनता है, सिर्फ ये नहीं कि कुदरत है लेकिन सुनता नहीं, नहीं कुदरत भी है उसके पास सुनने की, और वो सुनता भी है, इग्नोर किसी एक को भी नहीं करता, ऐसे नहीं है कि कुछ को सुन लिया दूसरों को इग्नोर कर दिया, नहीं असमीर, और ऐसा सुनने वाला है कि अगर जुबान से आवाज ना भी निकले, जुबान से लफ्ज, लफ्ज कहते हैं कि कोई आवाज जब जुबान से थ्रो की जाती है ना उसको लफ्ज कहते हैं, अगर जुबान से आवाज ना भी कोई बाहर निकाली जाए, अल्लाह ताला दिल की ही आवाज को सुन लेते हैं, राइट, दिल की ही आवाज को, जहन की ही सोचों को अल्लाह ताला सुन लेते हैं, और अल अलीम हर चीज का इल्म रखने वाले, अलीम है, मुबालगे की कसीरा, अल अलीम, कुल कह दीजिए, अगैर अल्लाह, आ ये इस्तेफामिया सवालिया कि क्या गैर अल्लाह, अल्लाह के अलावा, अल्लाह का गैर, ठीक है, यानी एनी वन एनी थिंग अदर देन अल्लाह, गैर अल्लाह, अत्तखिदु वलियन, कि मैं बनाऊं कि क्या मैं किसी को बनाऊं, मैं बनाऊं गैरुल्लाह को वली, मददगार, मैं गैरुल्लाह को मददगार बनाऊं, फातिर समावाती वल अर्द, यानी अल्लाह की फिर क्या सिफत बयान करी कि आसमानों और जमीन का बनाने वाला जो है फातिर, उसको उसको इनिशिएट करने वाला, ठीक है, बनाने वाले से भी इसका सादा तर्जुमा हो जाता है फातिर, फितरत, फितरत कहते हैं यानी जो जाहिरी साख्त होती है, बदन होता है, तो बदन को तो बाद में बनाया जाता है, बदन के अंदर की जो जो चीजें होती हैं ना उनको पहले बनाया जाता है, खुसूसन यानी जब आप कोई चीज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर खवातीन की क्लास, राइट, मर्द भी बहुत सारे जो है वो कुकिंग करते हैं, तो कोई खाना बनाने के लिए जब इरादा करती हैं, ठीक है, तो उसको बनाने से पहले आप उसकी फितरत का फैसला कर लेती हैं कि मुझे मीठा बनाना है या मुझे फीका बनाना है, यानी नमकीन बनाना है या मीठा बनाना है, मुझे बिरयानी बनानी है या मुझे निहारी बनानी है, आजकल माशाल्लाह खत्म कुरान के ऊपर खूब बिरयानी और हलीमे और निहारियां खाने को मिल रही हैं, तो यही चीज दिमाग में घूम रही है सारी की सारी इससे, ठीक है, तो मुझे जो है वो निहारी बनानी है या मुझे पुलाव बनाना है या मुझे बिरयानी बनानी है, तो भाई हर एक की फितरत अलग है ना, निहारी की अलग फितरत है, मीठे की अलग फितरत है, बिरयानी की अलग फितरत है, हलीम की अलग फितरत है, बनाई नहीं अभी आपने, लेकिन उसके फितरत का फैसला आपने पहले कर लिया है, बनाएंगे तो बाद में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना ये सिर्फ ये नहीं कि मिट्टी का खाका बना दिया और फिर उसके बाद सोचा कि अब क्या करूं मैं इसका, नहीं पहले जो है वो उसकी फितरत बनाई यानी फितरत का फैसला किया, अब उस फितरत के ऊपर जो है ना फिर पूरा का पूरा खाका और फिर उसके अंदर जितनी सलाहियतें डाली, जितनी उसके अंदर चीजें डाली, वो भी अल्लाह ही ने किया, फितरत भी अल्लाह ही ने बनाई, किसी और ने नहीं बनाई, ठीक है ना, जैसे होता है ना वो साइंसदान जो होते हैं या इन्वेंटर्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो तो एक प्रोटोटाइप बना देते हैं, प्रोटोटाइप जिसके अंदर जो है उस चीज की फितरत होती है, बनाता असल में कोई और है, वो फैक्ट्री वाले बनाएंगे या वो जो है वो बढ़ई बनाएगा, अगर कोई लकड़ी की इन्वेंशन होगी ना तो वो बढ़ई बनाएगा उसको, इन्होंने तो खाली आइडिया दे देना है उसको, ठीक है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ, राइट, बगैर किसी दूसरे की हेल्प के, बगैर किसी दूसरे की शिरकत के, पार्टिसिपेशन के, अल्लाह ही ने सब कुछ किया और आगे भी करे चला जा रहा है। फातिर समावाति वल अर्ध वह हुआ युत्इमु, और वो खिलाता है, वो खिलाने वाला है, वला युत्अम, उसको नहीं खिलाया जाता, राइट, उसको खाने की हाजत नहीं है कि तुम उसको खिलाओगे, तो अल्लाह खिलाता है। जब हजरत ने हमें दीन के काम के ऊपर लगाया और फरमाया कि हाँ दीन का ही काम करें आप, ठीक है, उस वक्त क्या, यानी बहुत है लोगों की जिंदगी में कहें कि हाँ हजरत ने मुझे ये बात कही थी, मेरे शेख ने मुझे ये बात कही थी, वो जो है ना वो सारी जिंदगी याद रहती है। जुमले तो बहुत सारे कहे थे, लेकिन एक जुमला जो स्टैंड आउट करता है ना, उस पूरे हमने आधे पौन घंटे की साजिश की, और साजिश की अहलिया की जो साथ मीटिंग हुई थी उस मौके के ऊपर, कि जब ये हम फैसला कर रहे थे कि हमने यही काम करना, तो हजरत ने वो जुमला कहा था ना, वो स्टैंड आउट कर गया और जैसे कि चिपक के रह गया। क्या था कि अल्लाह ही आपको पहले भी खिलाता था, पहले आप अपने जॉब से नहीं खाते थे, कंपनी से नहीं खाते थे, आप अपने एम्प्लॉयर का नहीं खाते थे, अल्लाह ही पहले भी खिलाता था और आगे भी अल्लाह ही खिलाएगा, पहले भी अल्लाह ही खिलाता था। ये मत समझना कि पहले तो मैं कंपनी से खाता था, अब जो है ना मैं कहूंगा दीन का काम करूं तो अब मुझे अल्लाह खिलाएगा, नहीं, पहले भी अल्लाह खिलाता था। जब दुनिया का काम करते थे ना, या जब जो है वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई काम करते थे, उस वक्त भी रिज्क तुम्हें अल्लाह ही से मिलता था और आगे भी अल्लाह ही से मिलेगा, कोई भी काम करो तुम। तौहीद, ऐसे कुरान आपकी तौहीद बनाता है, हमारी तौहीद बनाता है, जैसे सूरह अनआम के अंदर ये तौहीद वाली सूरत शुरू में पढ़ा था ना, ये खास जो है वो इसके अंदर तौहीद के मजामीन है, उसी तरह से अल्लाह वाले भी जो है ना, ये भी आपका तौहीद बना, आपकी तौहीद बनाते हैं, अल्लाह उनको जजाय खैर दे हमारी तरफ से, ठीक है। तो वह हुआ युत्इमु वला युत्अम, कुल कह दीजिए, इन्नी उमिरतु, मुझे तो बेशक हुक्म हो गया है, अन अकूना, के मैं हो जाऊं, अव्वल मन अस्लम, सबसे पहले अपने आप को सुपुर्द करने वाला, अस्लिम तस्लिम, अपने आप को हवाले कर दो, सुकून में आ जाओगे, सलामती में आ जाओगे। तो मन अस अव्वल मन अस्लम, सबसे पहले हुक्म माने, अच्छा सुपुर्द करने का मतलब हुक्म मानना, राइट, जो कि समझते हैं हकीकत को, उन्होंने इसका तर्जुमा हुक्म मानने से किया, ये नहीं कि सर झुका दिया, मानना वाना कोई नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों की होती है, या तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने सीखा होता है या खानदान से आया होता है, बस जो है ना वो हर वक्त मीन 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 मीन, हमारे एक थे वो आर्मी अलहमदुल्ला उनको हयात है, वो कर्नल साहब है ना पाकिस्तान आर्मी के, तो जो पाकिस्तान आर्मी के लोग होते हैं फिर उनका तो दिमाग आसमानों पर बातें करता है, तो वो इस तरह की बातें और भी करते हैं, मीन 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 करते रहते हैं खाली ये लोग, तो वो उनका वो मुझे याद रह गया कि वो बोलते थे ये चापलूसी किस्म के लोगों को जो है ना वो ऐसे बोलते थे, मीन 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 करते रहते हैं। तो ये नहीं है, असलम का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सर जो है वो झुकाते रहें और हिलाते रहें और जो है ना वो झुकते रहें, हत्ता कि वो फर्शी सलाम करते रहें और है? ये है जी इन्होंने सुपुर्द कर दिया अपने आप को, नहीं, बल्कि हुक्म मानना, चाहे आप फर्शी सलाम हरगिज ना करते हो, बल्कि करना भी नहीं चाहिए, राइट, लेकिन हुक्म मानने वाले हो, ठीक है, अगर आप झुक झुक के रहते हैं लेकिन मानते किसी और की हैं या अपनी चलाते हैं, तो फिर ये असलमा में नहीं आएगा, ये असलमा में नहीं आएगा, ठीक है। तो अव्वला मन असलमा, कि मैं मुझे हुक्म किया गया कि मैं सबसे पहले हुक्म मानू, यानी सबसे पहले हुक्म मानने का मतलब क्या कि मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं, सबसे ज्यादा हुक्म मानू, यानी कि मुझसे पहले कोई मुसलमान नहीं हुआ था, मैं आई विल बी द फर्स्ट मुस्लिम इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला मुसलमान बन जाऊं, क्या मतलब, बाकियों को आप क्या करेंगे जो आपसे पहले दुनिया से गुजर चुके हैं और वो भी मुसलमान थे, मतलब ये कि मैं अपने आस पास वालों में सबसे ज्यादा जो है वो हुक्म मानने वाला बन जाऊं, सबसे आगे निकल जाऊं, साबिकून अव्वलून में हो जाऊं, वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन, और के मुझे ये भी हुक्म किया गया, इन्नी उमिरतु अन ला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, कि मैं हरगिज मुशरिकों में से ना हो जाऊं। अल्लाह ताला के साथ शरीक, किसी भी चीज में, किसी भी मामले में किसी और को शरीक करने वाला अल्लाह ताला के साथ ना बन जाऊं, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा डटा रहूं तौहीद के ऊपर और शिर्क के ना होने के ऊपर, मैं सबसे ज्यादा डट जाऊं, हर एक से ज्यादा डट जाऊं। खुलासे तफसील, ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह की बयान कुरान है। तो इसमें हजरत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उन मुखातबीन मुखालिफीन से बतौर इल्जाम हुज्जत के आप कहिए कि जो कुछ आसमानों और जमीन में मौजूद है ये सब किसकी मिल्क है। मिल्क राइट, ली का लफ्ज है यहाँ पे मिल्क के माने में, बिलोंगिंग के माने। तो ये अल्लाह ताला ने, यानी इसका तर्जुमा ये है जो फरमाया अल्लाह ताला ने। तो अब इसकी तफसीर में फरमा रहे हैं कि अव्वल तो वो भी यही जवाब देंगे जिससे तौहीदी साबित होगी, क्योंकि कुरान मजीद ने खुद भी फरमाया है कि जब उनसे पूछते हैं कि भाई ये किसने बनाया, किसने बनाया, तो वो जवाब में ये कहते हैं अल्लाह ने बनाया, क्योंकि वो अल्लाह को मानते थे। यही तो मसला है ना सारा का सारा, हमें तो यही नहीं पता कि ईमान किसको कहते हैं। हम कहते हैं अल्लाह को मानना ईमान है, वो भाई काफिर भी अल्लाह को मानते हैं, मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते हैं, यहूद और नसारा भी अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह ही को खाली नहीं मानते बल्कि आखिरत को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं। क्या चीज, मतलब मरने के बाद वाली जिंदगी को वो भी मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या नहीं मानते, क्या नहीं मानते, रसूलुल्लाह को नहीं मानते, रसूलुल्लाह की नहीं मानते, ठीक है। कि अल्लाह वैसा है जैसे रसूलुल्लाह ने बताया, ये नहीं मानते। आखिरत वैसी है जैसे कि रसूलुल्लाह ने बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं मानते, ठीक है ना। हमारी तरह मानते थे रेड कार्पेट वेलकम मिलेगी मरने के बाद, और हमें जो है वो तालियों के क्या कहते हैं झनकार के साथ जो है ना हमें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, यही वो लोग भी मानते थे, क्योंकि हम हैं इतने अच्छे, हाँ हमने कभी कोई गलत काम ही नहीं किया, जितना गलत काम किया दूसरों ने किया और मेरे ऊपर किया, सारा जुल्म दूसरों का मेरे ऊपर, मैंने कोई थोड़ी किसी के ऊपर जुल्म किया, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद मरने के बाद मैंने जन्नत में चले जाना है, यही बात वो लोग भी मानते थे, ठीक है। हिसाब किताब कि हमें दोबारा से जिंदा करके फिर हमारे हरकतों का हिसाब होगा, नहीं ये नहीं मानते थे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को मानना, ठीक है। कोई अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान ले कि हाँ अल्लाह के रसूल हैं, ऐसी जुबानी तौर पर कहते अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जो वो बता रहे हैं कि आखिरत ऐसे, कि नहीं ये नहीं मैं मानता, ठीक है ना, ये नहीं मैं मानता, ये मानता हूं कि वो अल्लाह के रसूल है, लेकिन ये नहीं मानता जो वो बता रहे हैं कयामत के बारे में, तो वो क्या होगा फिर, है वो भी काफिर ही होगा, वो भी काफिर ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ना इन लोगों का भी यही मामला था, वो कहें भाई अल्लाह ने बनाया सब कुछ, तो अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो वो यही जवाब देंगे जिससे तौहीदी साबित होगी। और अगर किसी वजह से मिसले खौफ मकलूबियत के जवाब ना दें, यानी वो खामोश रह जाएं या किसी भी वजह से वो जवाब ना दें, तो आप खुद ही कह दीजिए, डोंट वेट फॉर देयर आंसर, राइट, आप खुद ही कह दीजिए कि सब अल्लाह ही के मिल, ठीक है। और उनसे ये भी कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से तौबा करने वालों के साथ, ठीक है, यानी कुल लिल्ला, आप खुद ही कह दीजिए कि अल्लाह का है, कतबा अला नफ्सिहि रहमा। ये तो चार चांद लग गए ना इस वाली आयत की वजह से, इस आयत के लफ्जी मफहूम की वजह से अब्राहमिक रिलीजन को भी चार चांद लग गए, प्लूरलिज्म को भी चार चांद लग गए, राइट, पेरेनियलिज्म को भी चार चांद लग गए, और आजकल जो पूरी दुनिया के अंदर यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने का मेहनत चल रही है, सब एक समत में जाने की मेहनत जो चल रही है, उसको चार चांद लग गए कि भाई अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कतब अला नफ्सिहि रहमा, मैंने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है, ठीक है। तो रहमत तो फिर ईसाई के लिए भी होगी और यहूदी के लिए भी होगी और जो है वो हिंदू के लिए भी होगी और बुद्धिस्ट के लिए भी होगी और जो है वो गुनहगार मुसलमान के लिए भी होगी, जैसे 2-3 दिन पहले जो है वो बात हुई थी कि जब हम उनको बात समझाते हैं तो आगे से कहते हैं कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है बड़ा गफूर है, वो जो है वो हमें माफ कर देगा, तो हमारे गुनाह तो, हमने तो गुनाहों से कुछ छोड़ना ही नहीं है, हमने तो जानी नहीं छोड़नी गुनाहों की, अल्लाह माफ कर देगा। तो ये वाली आयत तो दलील है इस बात के ऊपर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सारे के सारे, अल्लाह गुनाहगार मुसलमान को भी माफ करेगा और अल्लाह जो है वो काफिर और यहूदी को भी माफ करेगा, मुशरिक को भी माफ करेगा, ठीक है। युजुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कुरान मजीद ने खुद ही फरमा दिया कि इसी से जो है ना वो कसीर लोग गुमराह भी होते हैं और इसी से कसीर लोग जो है वो हिदायत में भी आते हैं। तो वो वही गुमराह होते हैं जो कतब आला नफ्सिह रहमा और इस जैसी दूसरी आयतों को लफ्जी तर्जुमे की बुनियाद पर या अपने अरबी की समझ की बुनियाद पर या अपनी अकल की बुनियाद पर समझते हैं, युदुल्लु बिही कसीरा, ठीक है, युदुल्लु बिही कसीरा। कुरान मजीद ने कोई हुज्जत नहीं छोड़ी हमारे ऊपर, हम पढ़ते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, लेकिन है तो उसके अंदर सब कुछ, ठीक है ना। इस किस्म की सारी मसलों का जवाब मौजूद है, लेकिन हम जाहिर नजर ही ना करें उसके ऊपर, बल्कि इसको जो है वो महजूर करके छोड़ दें। हत्ता कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद खुद क्या फरमाता है, अजीब अजीब वो गरीब मामला, قال الرسول, रसूल कहेंगे या रब्बी ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखजू हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी कौम ने कुरान को ऐसी चीज बना दी थी जिसको के साइड पर रखा जाता है, जिसको के छोड़ दिया जाता है, ना हिजर अच्छा है ना विसाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। हिजर किसको कहते हैं, हिजर कहते हैं कि जब दूरी हो, विसाल कहते हैं जब मुलाकात हो जाए, यार जिस हाल में रखे, यार अपने से दूर रखे फिर भी हम खुश हैं, यार जो है वो मुलाकात अता फरमा दे फिर भी हम खुश हैं। तो हिजर का मतलब इस शेर से दरअसल यार जो आपको हिजर का मतलब बता रहा था, ठीक है, हिजर का मतलब है दूरी, परे रखना, राइट, इल्तफात ना करना उसकी तरफ। तो कुरान अजीम शान हमें बताता है कि क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से शिकायत फरमाएंगे कि मेरी कौम ने कुरान को, इस कुरान को महजूर बना दिया था, एक ऐसी चीज बना दिया था जिसको के दूर रखा जाता है, परे रखा जाता है। बच्चे एक दूसरे के साथ जब करते हैं ना, कोई ज्यादती करते हैं, बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को जो है मार दिया, तो वो आता है अपनी अम्मी के पास, अम्मी अम्मी भैया ने मुझे मार दिया, भैया ने मुझे ऐसे कर दिया, भैया जो है मुझे फलानी चीज नहीं दे रहे, तो ये शिकायत का अंदाज होता है। तो शिकायत जो है ना वो फिर अम्मी के लफ्ज से शुरू होती है, अम्मी या अब्बू, फिर उसके बाद शिकायत आती है, नबी अलैहिस्सलाम या रब्बी ए मेरे रब, ए मेरे रब, शिकायत फरमाएंगे हमारे खिलाफ, राइट। हम इसको नहीं, इसको ऐसे मुस्तरद नहीं कर सकते, नहीं, हम तो तिलावतें करते थे, राइट, हम तो बच्चों को हिफ्ज भी करा देते थे, ठीक है, तो ये हमारे बारे में बात नहीं हो रही, हमने कुरान को थोड़ी महजूर रखा था, ये तो काफिरों के बारे में बात हो रही है। तो भाई काफिर भी तिलावत कर सकते हैं, करते भी हैं, ठीक है, हिदायत कौन लेता है कुरान से, कुरान को समझता कौन है, कुरान की रोशनी में कुरान के सामने अपनी जिंदगी को कौन रखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कुरान जो है वो क्या बता रहा है, इसको समझने की कोशिश कौन करता है, ठीक है। तो अगर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे और उससे हिदायत लेने में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, तो महजूर रखने वालों में हम भी शामिल हैं, हमारे खिलाफ भी ये शिकायत होगी, क्योंकि कुरान जो है वो हिदायत के लिए नाजिल किया गया था। तो कतब अला नफ्सिह रहम, तो इसकी असल हकीकत क्या है, फरमाया अपने फजल से तौबा करने वालों के साथ मेहरबानी करना, तौबा करने वालों के साथ, यानी जो भी हमने गुनाह किए हैं, जो हम गुनाह कर रहे हैं उन पे तौबा करना, नादिम और शर्मिंदा होना, एडमिट करना अपने गुनाह को, एक्नॉलेज करना अपने गुनाह को, राइट, और अल्लाह ताला से दिल में ये इरादा रखना कि अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं करूंगा, इसको तौबा कहते हैं। तो ये जो कतब अला नफ्सिहिर रहमा है ना, ये है तौबा करने वालों के साथ मेहरबानी फरमाना, अपने जिम्मे लाजिम कर दिया है। और जिन्होंने दिल में इरादा करके रखा हुआ है कि नहीं छोड़ना मैंने गुनाह को, कुछ नहीं होता गुनाह करने से, सब करते हैं, उसको भी कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं होगा, ऐसी की तैसी इन मौलवी लोगों की, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती ये बात। और ये भी कह दीजिए कि अगर तुमने तौहीद को कबूल ना किया तो फिर सजा भी भुगतना पड़ेगी, क्योंकि तुमको खुदा ताला कयामत के रोज कब्रों से जिंदा उठाकर मैदान हशर में जमा करेंगे, और कयामत की हालत यह है कि उसके आने में कोई शक नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कयामत की तफसीलात बताई है, खाली जमा करना नहीं बल्कि हिसाब किताब भी होना और गुनाहों की सजा भी मिलना। तो इस एक आयत को उठा करके आप साइड पे बिल्कुल बाहर निकाल दें कुरान से और कहें कि देखो 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 देखो, ये है ना कुरान के अल्फाज, ठीक है, तो नहीं भाई, आगे भी पढ़ो पीछे भी पढ़ो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से आपको सबाक के साथ जो है वो बात समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। तो लयजमानकुम इला यौमिल क़ियामत ला रैब फी, तो जमा करेंगे और कयामत की हालत यह है कि उसके आने में कोई शक नहीं है, ला रईब फी, मगर जिन लोगों ने अपने को यानी अपनी अक्लो नजर को जाया यानी मुअत्तल कर दिया है, मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया अपनी अक्ल और अपनी नजर को, यानी अक्ल है तो बड़ी अल्लाह ने दी भी है, इसी वजह से इनके ऊपर अहकाम भी लगते हैं, भाई जिसके पास अक्ल नहीं है तो उसके ऊपर 5 नमाजें भी फर्ज नहीं है, जिसके ऊपर अक्ल नहीं है उससे हिसाब किताब होगा ही नहीं, जिसके अंदर अकल नहीं है भाई, सारी चीजें शुरू ही अकल के साथ होती हैं, इस वजह शरीयत के जितने अहकाम हैं, फिका की जितनी किताबें हैं, हाँ जी नमाज की किसके ऊपर फर्ज है, आकिल बालिग राइट, इनके ऊपर फर्ज है। तो अकल को मुअत्तल कर दिया क्या मतलब, इस मामले में अकल को इस्तेमाल नहीं करते, बाकी अकल जो मौजूद है इनके पास वो बाकी सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं, इस मामले में इस्तेमाल नहीं करते अकल को, ये है अकल को मुअत्तल करने, यानी इधर गौर नहीं करते, सोचते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनने के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है ना, ये तो नहीं कि एक कान से सुना और अकल में घुसाए बगैर जो है वो किसी तरीके से दूसरे कान से निकाल दिया, अकल को इस्तेमाल करना है। सो जिन्होंने अपनी अकलो नजर को इस मामले में मुअत्तल कर दिया है ना, सो वो ईमान नहीं लेकर के आएंगे, वो नहीं मानेंगे, वो गौर नहीं करेंगे कि इन दलाइल की क्या हकीकत है और वाकई ऐसा सच है और वाकई ऐसा ही है, वो ईमान नहीं लेकर के आएंगे फिर। और उनसे बतौर इत्माम हुज्जत के ये भी कहिए कि अल्लाह ही की मिल्क है और जो कुछ रात में और दिन में रहते हैं, अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ रात में और दिन में रहते हैं, यानी जो कुछ दिन में है और रात में है वो अल्लाह ही की मिल्क है, उसके और उस इसके और इससे पहली आयत कुल लिमन मा फिस समावात के मजमुए का हासिल ये निकला कि जितनी चीजें किसी मकान में हैं या किसी जमान में हैं सब अल्लाह की मखलूक है, ठीक है। लिमन माफी समावाती वन अर्ध, उसको मिलाया और जो है वो इसको मिलाया, तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है और वही सबसे बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है, वो बहुत समीउ अलीम। फिर इस बात तौहीद के बाद उनसे कहिए कि क्या अल्लाह के सिवा जो के आसमान और जमीन के पैदा करने वाले हैं, फातिर समावाती वल अर्ध, और जो सबको खाना खिलाते हैं उनको कोई नहीं खिलाता, क्योंकि वो खाने पीने की एहतियाज से बाला तर है, उनको मुख्ताजी है ही नहीं खाने पीने की, तो उनको कौन कोई खिलाएगा, तो क्या ऐसे अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद करार दूं, मैं किसी और को अपना माबूद करार दूं, आप इस इस्तिफहाम इनकारी की तशरीह में खुद फरमा दीजिए कि मैं गैर अल्लाह के को माबूद कैसे करार दे सकता हूँ, इस्तिफहाम इनकारी यानी एक ऐसा सवाल कि यानी इसमें कह रहे हैं यानी आप असल में सवाल नहीं कर रहे कि जिसमें कि आपको जवाब मतलूब है, नहीं आपको कोई जवाब मतलूब नहीं है, यू ऑलरेडी नो द आंसर, ठीक है, तो आप तो इनकार करने के लिए अगले बंदे की जो है ना वो नफी करने के लिए जो है वो असल में उसके सवाल कर रहे हैं ताकि वो सोचे इस वाली बात, नॉट डैट कि वो आपको कोई जवाब दे बल्कि वो सोचे। इस्तीफा में इनकारी की तस्वीर में आप खुद फरमा दीजिए कि मैं गैर अल्लाह को माबूद कैसे करार दे सकता हूँ जो अकल और नकल के खिलाफ है, यानी कोई नकली दलील भी इसके ऊपर नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे कहा था, वो बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नकल होते हुए हम तक पहुंची है, तो ये नकली दलील कहलाएगी। नहीं, ऐसी कोई नकली दलील नहीं है और कोई अकली दलील नहीं है, इवन कॉमन सेंस के बात खिलाफ। मुझको ये हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल कर लूं, ठीक है, जिसमें अकीदे तौहीद भी आ गया, और मुझको ये कहा गया कि तुम मुशरिकीन में से हरगिज ना होना, ठीक है। इस पे बारे में बात हो चुकी है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल कर लूं, एक तो ये है कि मैं सबसे पक्का ईमान वाला हूँ, सबसे ज्यादा ईमान वाला हूँ, और दूसरी बात यह कि यहाँ ये नबी की बात भी हो रही है ना, तो वही तो नबी के ऊपर आती है, तो अगर नबी कहे कि नहीं पहले मैं देखूंगा कि अगर दूसरे लोग मेरी बात मानते हैं, ये वाली बात मानते हैं ना, तो फिर मैं खुद मानूंगा वरना मैं नहीं मानूंगा, ठीक है ना। जिस तरह वो सेल्स के वो आए ना, कोई कोई बंदा आए सेल्स टीम के पास और कहे कि आई वॉन्ट यू टू सेल दिस प्रोडक्ट फॉर मी, ठीक है ना, आप ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करें, लेकिन आप खुद भी पहले इसको खरीदें ना, और आप दूसरे लोगों को भी सेल करें, तो वो कहें कि नहीं नहीं यार, मैं खुद तो नहीं खरीदता इस वाले प्रोडक्ट को, हाँ मैं दूसरों को सेल करने की कोशिश करता हूँ, अगर दूसरे खरीदेंगे ना तब मैं भी खरीदूंगा, ठीक है ना। तो वही जो है वो ईमान का मामला, दूसरे जो है ना वो अगर इस पिक्चर को कबूल करते हैं जो कि अल्लाह और आखिरत के बारे में पिक्चर मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बता रहे हैं, तब मैं भी कबूल करूंगा वरना मैं कबूल नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता नबी के साथ, नबी सबसे पहले उसको खुद कबूल करते हैं कि वाकई ऐसा ही है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो दूसरों को बताते हैं। यही मामला जो है वो हर दाई के साथ यही मामला है कि दाई जो है वो दूसरों को जिस तरफ दावत दे रहा है, जिस तरफ जो है वो उनको लाने की कोशिश कर रहा है, वो खुद ही उसके बारे में डामाडोल है क्या? वो खुद ही उसके बारे में जो है वो तजज्जुब का शिकार है और जो है वो शक का शिकार है। तो ऐसा तो दाई जो है वो दाई तो ना हो ना, वो पता नहीं क्या चीज हो गया फिर वो, ठीक है। तो दाई के लिए तो खुद सबसे पहले ईमान लाना, राइट, अन अकुना अव्वला मन अस्लमा वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, ये हम सब के ऊपर ये वाली बात अप्लाई होती है अगर हम चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, हमारी दावत जो है वो इस क्लास की हद तक जो है वो क्या है कि जी लोग जो है वो क्लास में जुड़ जाएं और जो है वो दरस कुरान सुने और ये फायदे की चीज है, ठीक, लेकिन साथ साथ जो होते हैं ना वो ये देर इन द बैक ऑफ द माइंड देर इज समथिंग लर्किंग, लर्किंग है ना वो अंग्रेजी में कहते हैं वो चीज जो है ना, वो कुछ है पीछे, कुछ डाउट्स हैं, कुछ मसले हैं, तो हम चाहते भी हैं कि लोग आए और वो फायदा उठाएं, लेकिन हम पूरी तरह नहीं चाहते इस बात को, ठीक है ना, हम पूरी तरह वी आर नॉट लाइक इन, वी आर नॉट इन, यानी कंप्लीटली कन्विंस नहीं है हम कि हाँ ये जो है ना इसके अंदर फायदा है, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा कि भाई अभी आप खुद ही जो है वो कन्विंस नहीं है, अभी आप खुद ही जो है वो मानने वाले नहीं बने हैं, ये जो इस डाउट के साथ जो आप लोगों को दावत दे रहे हैं, इस दावत के अंदर फिर जान नहीं होती, इसके अंदर असर नहीं होता, ठीक है। बयान करवाने के लिए बुला लिया लेकिन दिल के अंदर है कि नहीं यार बस ये भाई इसी, बस इसी हद तक, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा जो है ना वो हम इनको फ्री नहीं होने देंगे। जैसे वही कि चंद दिन पहले बात हुई थी कि एक मुल्क है हमारे करीब में ही, तो उनके बारे में बड़ा ये मशहूर है, लोगों ने भी हमें बताया कि वो बयान करने वालों को बुलाते हैं, मौलाना साहब को बुलाते हैं पाकिस्तान से और मौलाना साहब को बुलाते हैं हजरात को इंडिया से, और सुनते हैं और आगे चलता करते हैं, और सुनते हैं और आगे चलता करते हैं, और सुनते हैं और आगे चलता करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बस इसी हद तक रखना चाहते हैं, बयान करें और आगे चलें, फ्री ना होइएगा ज्यादा, आप ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है हमसे, ठीक है ना, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे कर लेना चाहिए, और आप जो है वो बैत कर लें, आप जो है वो सही ताल्लुक बना लें, और आप जो है वो तज़किया नफ्स की मेहनत में भी जो है वो आप संजीदा हो जाए, नहीं, ये अपने काम से काम रखिए, बस बयान किए आगे चलिए, ठीक है, तो ये तो फिर इससे फिर फायदा नहीं होता, सही है। तो आजकल यही दीन चल रही है ज्यादातर, है तो कहते हैं ना कुछ लोग इस तरह की स्लैंग होती है, चल रही है, यही चल रही है आजकल ज्यादातर, बहुत कम लोग होते हैं जो कि संजीदा होते हैं वो वाकई सीखना चाहते हैं और वाकई तब्दील होना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो फुल कमिटमेंट के साथ जो है वो दीन को सीखते हैं। ओके, फिर वो फिर आगे बात करते हैं, यही जो है वो तरीका नबियों का है फुल कमिटमेंट के साथ, और यही तरीका जो है वो सहाबा है। हम दियोबंदी अकीदे के दिफा में तो बड़ा नबी नबी और नबी का अजमत और सहाबा सहाबा करते हैं, ये ना वो एक बिलोंगिंग बन गई हमारी, ये हम दियोबंदी हैं तो हमने सहाबा की अजमत के ऊपर बहुत बातें करनी है। मैं ही नहीं कह रहा दियोबंदी होना कोई बुरी बात है, हम भी अलहमदुल्ला दियोबंदी हैं, लेकिन दियोबंदी होने का यह मतलब नहीं है कि बस आप जो है ना वो अकीदे के ढोल पीटते रहें, इस तरह के किताबी अकीदे के ढोल पीटते रहें, करना कराना कुछ नहीं है। सहाबा जैसा बनने की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है, ना उस तरफ जो है वो हमारे पास टाइम है कि सब ये देखेंगे सहाबा थे कैसे, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी थी, कैसा उनका ईमान था, हम वैसा ईमान अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, नहीं जी, दिस इज टू मच, दिस इज लाइक नॉट माई प्रॉब्लम, राइट। मेरा तो प्रॉब्लम यह है कि मैं अजमत सहाबा पे ढोल बजाऊं जा इसके ऊपर, राइट, अजमत सहाबा के नारे लगाऊं, ठीक है ना, और उसके ऊपर तंजीमें बनाऊं और उसके ऊपर जो है वो बहस करूं, जो दूसरे अकीदे वाले हैं जो सहाबा को अच्छा नहीं समझते, मैं उनसे बहस करूं, मैं उसको जो है वो नाकू चने चबवा दूं, ऐसी की तैसी कर दूं मैं उनकी, मैं अजमत सहाबा वाला हूं। लेकिन सहाबी होने का मतलब क्या होता है, ईमान लाने का मतलब क्या होता है, दीन के बारे में संजीदा होने का क्या मतलब होता है कि वो मैं खुद करूं और अपने घर में जो है वो उसके ऊपर अमल करके जिंदगी गुजारूं, नो 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 एंड एब्सोल्यूटली नो, दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा फ्री हो गए, जिसको कहते हैं ना, जिसको हम दूसरों को, अब ज्यादा दीनदार हो गए ना आजकल तो हम दूसरों को कहते हैं, वो कहते हैं जी वो टू मच मौलवी बन गया, टू, अरे भाई हमारा भी यही हाल है, हमारा भी यही मसला है कि हम भी यही कहते हैं मैं टू मच मौलवी नहीं बनना चाहता, नहीं, मैं टू मच मौलवी, मैं अपनी औलाद को टू मच मौलवी नहीं बनाना चाहता, चाहे कितनी लंबी आपने दाढ़ी रखी हो, ये दाढ़ी के जमाने खत्म हो गए, जिस वक्त दाढ़ी रखना मुश्किल काम होता था, अब दाढ़ी रखना बड़ा आसान काम हो गया, तो अब दाढ़ी रखने वाले जो है ना ये मत समझे कि हम तो कामयाब हो गए, दाढ़ी रख ली है हमने बहुत बड़ी, अब जमाना जो है वो दाढ़ी के खिलाफ नहीं है, ठीक है, तो दाढ़ी रखना इज नॉट कामयाबी, या वो पुराना वाला जमाना हो गया जिसमें अबू जहल की भी दाढ़ी होती थी, बगैर दाढ़ी के अबू जहल नहीं होता था, वो तो फारिस के अंदर वो लोग दाढ़ी नहीं रखते थे, मक्का मुकरमा के अंदर कोई थोड़ी ऐसा था कि दाढ़ी मुंडे जो है वो इधर उधर फिर रहे होते थे, काफिर काफिर लोग, राइट, नहीं, सबकी दाढ़ी होती थी, अब हमारी भी दाढ़ी हो गई, हम समझ रहे हैं कि हम जो है वो ईमान वाले बन गए, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मारूफ मसाइल हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के, इन्होंने खुद जो है वो कंपाइल किए हैं अपने समझ के मुताबिक भी लिखा है, और मुख्तलिफ किताबों से मुख्तलिफ मशाइख के बयानात वगैरह सब यहाँ पे उन्होंने कंबाइन किए हुए हैं, तो मारूफ मसाइल में लिखते हैं इन्होंने सवाल लिखा है, इतना शुक्र है आपने डायरेक्ट मैसेज में दफा लिखा है, अगर किसी गुनाह पर तौबा ना कर पाए तो क्या अल्लाह रहम करेंगे, या अल्लाह की रहमत के लिए गुनाह से तौबा शर्त है। इनका सवाल दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी गुनाह पर तौबा ना कर पाए तो क्या अल्लाह रहम करेंगे, या अल्लाह की रहमत के लिए गुनाह से तौबा शर्त है, ठीक है, तो अब इस सवाल का जो है ना वो फिर वही बात है आपके, अच्छा ही वो आपने डायरेक्ट मैसेज में लिखा है वरना, तो अब सवाल को सबसे पहले क्या है, खवातीन जो क्लासेस रहती हैं उनकी उनकी क्लास के अंदर ये बात बहुत अच्छी तरीके से हुई थी, किसी को याद है क्या कहने वाला था ये आज इस वक्त, सवाल जब सबसे पहले आपके पास आता है, जब सवाल आता है तो सबसे पहले क्या करना होता है उस सवाल के साथ, डाइसेक्ट द क्वेश्चन, एग्जैक्टली, ठीक है, दकतूरा वाला आपने जवाब दिया है बिल्कुल सही, ठीक है ना, डाइसेक्शन करनी होती है, सवाल की डाइसेक्शन करनी होती है, ठीक है, सवाल सही है कि नहीं है, रीड इट बिफोर सेंडिंग, नहीं वो तो सवाल साहिल को ये काम करना होता है ना, मैं तो मसूल की बात करूँ कि मसूल जिससे सवाल किया जा रहा है उसको सबसे पहले काम क्या करना होता है, साहिल को अलबत्ता ये काम जरूर करना चाहिए कि वो सवाल करने से पहले खुद तो सोचे कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। नॉट लाइक मैं आपकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने ये सवाल किया है, लेकिन कुछ लोग हैं माशाल्लाह व्हाट्सएप बहुत इजीली एक्सेसिबल है, शेर साहब दूसरे एंड पे बैठे हुए हैं, फ्री व्हाट्सएप है, शेर साहब भी फ्री हैं, जाहिर सी बात है, राइट। तो जो ख्याल आया जहन के अंदर, सोचे समझे ना कुछ को सोचा कि भाई मैं जरा गौर कर लूँ कि इसका ये मतलब था, असल में उन्होंने ये बात इस वजह से कही थी, ये हो गया, तो थोड़ा सा आप तदब्बुर कर लें, थोड़ा सा और कर लें, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही, तब सवाल पूछे। नहीं, व्हाट्सएप डन 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 लिखा या बोला, और उसको जो है वो व्हाट्सएप ने खुद ही कन्वर्ट कर लिया राइटिंग के अंदर, क्योंकि वो मना करते हैं वॉइस मैसेज भेजने से, तो इस वजह से राइटिंग में भेजने, तो अब जो है ना वो लंबी सी एक तकरीर कर ली और उसको जो है वो राइटिंग में कन्वर्ट करके ठक करके शेर साहब को भेज दिया, राइट। अब उनका काम वो जाने जो करना है उनको, उनके साथ टाइम है, उनके पास फालतू टाइम है, अब वो उनका मसला है। मैंने तो अपने दिमाग के जो कुछ खाना वो मैंने उतार दिया सारा का सारा व्हाट्सएप के अंदर, अनलोड कर दिया, ऑफलोड कर दिया और शेर साहब के पास लोड कर दिया, अब वो जाने उनका काम जाने। तो ये साहिल का मसला है, साहिल को पहले सोचना चाहिए कि वो क्या सवाल कर रहा है, ठीक है। लेकिन मसूर को सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि सवाल को देखें कि वो सवाल क्या कर रहे हैं, वो सवाल सही है, सवाल गलत है, सवाल के अंदर जो है वो यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो भरी हुई हैं, ठीक है ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स ही जो है वो गलत है, तो फिर इसको पहले ठीक करना होगा, जवाब बाद में देना होगा, ठीक है। हाँ, वेदर इट इज बेस्ड ऑन रॉन्ग कंजेक्चर्स, गलत गुमान के ऊपर जो है वो आपने एक सवाल कर मारा है, ठीक है। तो वही बात है इस सवाल के अंदर ही कि अगर किसी गुनाह पर तौबा ना कर पाए तो क्या अल्लाह रहम करेंगे, या अल्लाह की रहमत के लिए गुनाह से तौबा शर्त है, ठीक है। तो इसके दो जवाब हैं, एक जवाब जो है ना वो तो आपके इस सवाल के वो हम जो है ना वो करेक्ट मान कर, ठीक है, कि आपका सवाल सही है, ये मान करके हम जो जवाब देंगे ना इसका, वो ये है कि देखें अगर ईमान है, अगर ईमान पर खात्मा हुआ है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की तमाम बातों को सच्चा तस्लीम करने की हालत में मौत आई है, ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ कॉजेज बना करके अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमत फरमाएंगे और फरमा सकते हैं, दोनों चीजें, ठीक है ना। किसी के ऊपर कितनी रहमत फरमाएंगे कि उसके सारे गुनाह बख्श देंगे, किसी के ऊपर कितनी रहमत फरमाएंगे उसके कुछ गुनाह बख्श देंगे जिससे उन्होंने तौबा नहीं करी है, राइट। तो ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है, सही है, इस तरह से हो सकता है कि हाँ अल्लाह ताला ईमान की वजह से हो जाए वो सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो आपके सवाल का सीधा सीधा एक ही जवाब है, अगर ईमान पे खात्मा हुआ तो अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ फरमा सकते हैं, रहमत, इसी को रहमत कहते हैं। दूसरा जो इस जो 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 इंटरप्रिटेशन आपके सवाल की है ना वो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। वो ये है कि अगर किसी गुनाह पर तौबा ना कर पाए, ये बड़ा ये लफ्ज जो है ना ये बड़ा वो है सबसे सियासत किस्म का, ये लफ्ज पाकिस्तानी सियासत टाइप का ये लफ्ज है, ठीक है, कि यानी करना भी कोई बुरा काम है लेकिन अपने लिए जो है ना वो एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना है, अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना है बुरे काम के साथ साथ, ठीक है, ना कर पाए, करना तो चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, है ना, कितना सॉफ्टनेस है अपने बारे में माशाल्लाह, ठीक है, यानी मैं जो हूँ वो पहाड़ पे चढ़ना चाहता था, कोशिश तो मैंने बड़ी करी लेकिन चढ़ नहीं पाया, तो मेरा क्या कसूर है इसका, मैंने तो बड़ी कोशिश करी, तो तौबा भी जो है ना गोया के पहाड़ पे चढ़ने वाली जैसी कोई चीज हो गई, ठीक है, कि बड़ी कोशिश करी तौबा करने के लेकिन कर ना पाए, तो क्या अल्लाह ताला रहम करेंगे, या अल्लाह की रहमत के लिए गुनाह से तौबा शर्त है। तो भाई तौबा जो है ना, आपका जो सवाल है ना उससे ये लग रहा है कि आप तौबा को गुनाह छोड़ देने से कंफ्यूज कर रहे हैं, गुनाह को छोड़ देने से कंफ्यूज कर रहे हैं, क्यों ऐसा कंफ्यूज कर रहे हैं, अगर इसलिए कि आप बात ही नहीं सुनते, ठीक है ना, आप बात ही नहीं सुनते, वही बात है, वहुम ला यस्मऊन तालू समेना वहुम ला यस्मऊन, कहते हैं जी नहीं, आप कैसे कह सकते हैं मैं नहीं सुनता, मैं तो सुनता हूँ लेकिन सुनते नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि गुनाह पर नादिम होना, राइट, उसको जस्टिफाई ना करना, उसको एडमिट करना, उसको एक्नॉलेज करना, ये है तौबा, अन्नदमु तौबतुन, गुनाह छोड़ना नहीं है तौबा, गुनाह पे नादिम होना, शर्मिंदा होना, ठीक है। तो अगर तौबा ना करवाए, यानी कि अगर नादिम ना हो पाए, अगर गुनाह पर नादिम ना हो पाए, तो क्यों भाई, क्यों नादिम ना हो पाए है? यानी बड़े धड़ल्ले से और बड़े फखर के साथ गुनाह कर रहे थे, तो सारी जिंदगी फखर के साथ गुनाह कर पाए करते रहे, तो क्या अल्लाह ताला रहम करेंगे? ठीक है, ये असल में जो है ना, वो आपके सवाल को हम इस तरह से डाइसेक्ट करके हम इस तरह से उसको एक्सपैंड करते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर होता है ना वो कंपाइलर, तो कंपाइलर कोड को जो है ना वो पहले खोलता है, एक्सपैंड करता है। हम भी आपके सवाल को कंपाइल करते हैं इस तरह से। तो अगर हम सारी जिंदगी जो है वो गुनाह पर फखर करते रहे और खुश होते रहे अपने गुनाह के ऊपर, तो क्या अल्लाह ताला रहम करेंगे? ये आपका सवाल होना चाहिए था। या अल्लाह की रहमत के लिए जो है वो गुनाह पर फखर करना छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह की रहमत के लिए गुनाह पे धड़ल्ले से उसका इजहार करना और उसके ऊपर जो है वो खुश होना, क्या ये छोड़ना पड़ेगा अल्लाह की रहमत के लिए? तो हाँ, छोड़ना पड़ेगा भाई। भाई नादिम हो जाए, सीधी सीधी बात है, इतना मुश्किल काम नहीं है गुनाह पे बना पे, ठीक है ना, बस इतनी सी बात, नादिम हो जाए, सही है। और दिल में इरादा, उसमें भी पैसे नहीं लगते, उसमें भी उम्रे नहीं करने पड़ते, राइट, उसमें भी जो है वो सदके खैरात नहीं करने पड़ते, वो दिल की एक कैफियत है। और अल्लाह ताला, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो दिल की कैफियत को भी सुनता है, राइट, असमीय, जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल की कैफियत को वो सुन लेता है, असमीय है वो भाई। तो भाई ये है तौबा यार, छोड़ना ना छोड़ना ये तो हालात पे डिपेंड करता है, उस कुव्वत पे डिपेंड करता है जो अल्लाह ने हमें दी है, राइट, हालात पे डिपेंड करता है जो अल्लाह ताला हमारे ऊपर बनाते हैं, ये तो बाद की बातें हैं सारी की सारी। लेकिन नादिम होने से कोई थोड़ी मैं वो इज्तनाब करना है, और नादिम होने को थोड़ी अवॉइड करना है, और उल्टी सीधी बातें भी थोड़ी करनी है। और रहमत जो है ना, तो ये अल्लाह की रहमत वाला मामला, देखें आपके सवाल की जो पहली इंटरप्रिटेशन थी उसमें हमने क्या कहा, अगर ईमान पे खात्मा होता है तो फिर अल्लाह ताला इवन गुनाहगार मुसलमान के ऊपर भी रहमत कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तो उस वाले केस में था कि जबकि मरने के बाद बात की बात हुई, लेकिन ये जो दुनिया के अंदर, दुनिया की जिंदगी के अंदर भी तो एक रहमत होती है ना, अल्लाह की रहमत के बगैर कोई थोड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो हमारे पास खैर हो रही है, कुरान मजीद पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत का नुजूल होता है, कोई नेकी काम करते हैं अल्लाह की रहमत का नुजूल होता है, अल्लाह की रहमत है जबी तो खा रहे हैं, अल्लाह की रहमत है जबी तो जो है वो सुकून के साथ घर में रह रहे हैं, अल्लाह की रहमत है जबी तो औलाद को देख करके खुशियां मिल रही हैं, ये सब अल्लाह की रहमत ही तो है ना। तो तौबा करने के ऊपर फिर जिंदगी के अंदर भी अल्लाह की रहमतें मिलती हैं, और अगर तौबा नहीं कर रहे होते हैं तो उन रहमतों से हम महरूम रहते हैं। जिंदगी के दौरान जो रहमतें अल्लाह की आनी होती हैं, तौबा के ऊपर उन रहमतों से महरूम रहते हैं, उन रहमतों से महरूम रहते हैं, उनके लिए लाजमन तौबा करना है, तब वो वाली रहमतें मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। जो कि लाइफ लॉन्ग रहमतें जो होती हैं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रहमतें होती हैं, ठीक है ना। मरने के बाद वाली रहमत तो अल्लाह ताला ईमान की वजह से माफ कर दें किसी को, उसके ऊपर रहमत फरमा, हम तो अभी जिंदगी की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने कि हजरत लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं कि वो अल्लाह की बात और नबी की बात सब जानने की कोशिश करें, बस जैसे घर वाले दीन पर रहते वैसे आगे की नस्ल भी चल रही, तो इस बात पर अल्लाह सजा तो देंगे ही। सजा तो जिंदगी में मिल रही होती है ना, तो वो बस मिल रही है सजा, देंगे तो बहुत बात की बात है, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा दे रही है। शायद वो ये कहना चाह रहे हों कि मौसम गुना हमें नहीं पता होते, कैसे गुना पर अगर तौबा नहीं, नहीं नहीं वो यही नहीं कहना चाह रहे हैं, आप डोंट वरी, आप वो यही बात नहीं कहना चाह रहे थे। अच्छा, खुलासे तफसीर मुकम्मल हुआ। अच्छा, तो कहते हैं कि वही सबसे बड़ा, हाँ नहीं, खुलासे तफसीर हमने मुकम्मल हो गया। तो हमारे को मसाइल 4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, हमारे को मसाइल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आयत कुल लिमम मा फिस समावात में कुफार से सवाल किया गया है कि आसमान और जमीन और उनकी तमाम कायनात का मालिक कौन है, मालिक। तो फिर खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इरशाद, जवाब इरशाद फरमाया कि सब का मालिक अल्लाह है। यानी ये जो कुरान मजीद में जो अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं है, ये तो अल्लाह के अल्फाज है ना, अल्लाह का कलाम है ना ये, लेकिन अल्लाह ऑन बिहाफ ऑफ नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि कह दीजिए आप लिल्ला अल्लाह के लिए। कुफार के जवाब का इंतजार करने की बजाय खुद ही जवाब देने की वजह ये है, यानी खुद ही नबी को कहने की कि आप जवाब दे दिए, उसकी वजह यह है कि जवाब कुफ्फार मक्का के नजदीक भी मुसल्लम जवाब है। वो अगरचे शिर्क और बुतपरस्ती में मुब्तला थे मगर जमीन और आसमान और कुल कायनात का मालिक अल्लाह ताला ही को मानते थे। ठीक है, हाफिज साहब हैं यहाँ पे कोई, या हमारे कारी जान साहब, उस रात को जो आयत थी साबीन वाली, वो अगर यहाँ पे नकल कर सकें, मन आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिरी वो जन्ना क्या थी वो आयत, वो यहाँ पे नकल कर सकता है? ये बहुत अहम आयत है जिसको कि आज के दौर में लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस आयत की गलत तशरीह है। तो अब वो हाफिज साहब लगता है कुरान मजीद अपना तरावी के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी और को? माशाल्लाह, नहीं ये नहीं, ये वाली आयत नहीं भेजी है। वो जो यहूदा व नसारा व साबिईन मन आमन बिल्लाह व यौमिल आखिर वो वाली, हाँ जज़ाकुमुल्लाह, इन्नल्लज़ीना आमनू है, इन्नल लजीना आमनु वल लजीना हादु वन नसारा वसाबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर 62 क्या फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर कि बेशक वो लोग जो कि ईमान लेकर के आए, ठीक है ना, जो कि हम अपने आप को समझते हैं बगैर इसकी तफसील जाने हुए, हम अपने आप को ईमान वाला समझते हैं तो हमारी बात हो रही है, इन लजीना आमन वो लोग जो ईमान लेकर के आए, आगे फरमाते हैं वल्लजीना और वो लोग हादू जो यहूदी हो गए, यानी जो यहूदी हैं, ठीक है ना, वन नसारा और जो ईसाई हैं, वसाबीन और जो कि साबीन है, यानी ये भी एक अलग दीन है, ठीक है, मुसलमान नहीं है ये अलग दीन है, तो हादू वन नसारा वसाबीन, ठीक है ना, तो मुसलमानों का जिक्र पहले हो गया, फिर यहूदियों का जिक्र हो रहा है, फिर नसारा का जिक्र हो रहा है, फिर साबीन का जिक्र हो रहा है, और फिर फरमा रहे हैं मन आमना बिल्लाही जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर के आए हैं ना, इसको ऐसे ही तर्जुमा करेंगे ना इसका, मन आमना बिल्लाही जो अल्लाह पर ईमान लेकर के आए, वल यौमिल आखरी और आखिरत के ऊपर ईमान लेकर के आए, ठीक है ना, यानी देर इज अ लास्ट डे, पीपल विल बी री इनकार्नेटेड, ठीक है, दोबारा से जिंदा किए जाएंगे, वाह मेरा सवाल, और उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे काम क्या होते हैं भाई, अच्छे काम होते हैं किसी को थप्पड़ मत मारना, अच्छे काम होते हैं किसी को जो है वो ड्राइववे को साफ कर देना, वहां पे जब स्नो होती है तो उनकी स्नो जाकर के साफ कर देना, और अच्छा काम ये होता है कि जो है वो उनको खाना खिला देना, अच्छा काम ये होता है कि उनको पानी पिला देना, अच्छा काम ये होता है कि उनको किसी और मुसीबत से जो है वो बचाने का फरीजा अंजाम दे देना, ये सारे मेरा सालेहन है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे वो मेरा सालेहन और उन्होंने नेक काम किए, तो क्या होगा उनके साथ, फलाहुम अजरुहुम इंद रब्बे, बस उनके लिए उनके रब के पास अजर है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा और कोई हुज़्न नहीं होगा उनके ऊपर, ना कोई गम होगा और ना किसी कोई डरने वाली चीज से उनको डराया जाएगा, कोई खौफ नहीं होगा, ना अंदर का खौफ ना बाहर का खौफ, यानी क्या यहूदियों के ऊपर भी कोई खौफ नहीं होगा, है ना, जाहिरी तर्जुमा क्या है, यहूदियों के ऊपर कोई खौफ नहीं होगा क्योंकि वो भी अल्लाह को अल्लाह मानते हैं ना, राइट, अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह है, खालिक है और कादिर है और राजिक है वो, और यहूदी सारे मानते हैं इस बात को, और नसारा के ऊपर भी कोई खौफ नहीं होगा, राइट, और अल्लाह के पास उनके लिए भी अजर है, नसारा के पास भी, और जो है वो साबीन के पास के लिए भी अल्लाह के पास अजर है, तो फिर हम ऐसे ही तालियां बजाते फिर रहे हैं, हमारा कुरान ये कह रहा है कि यहूद नसारा साबीन सबके लिए जो है वो अल्लाह के पास अजर है, उनके पास कोई खौफ नहीं होगा, उनके पास कोई गम नहीं होगा, है ना, तो मौलवी लोग जो है तालियां बजा रहे हैं कि नहीं जो है वो हम सिर्फ हम जाएंगे, सिर्फ मुसलमान जाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, ठीक है, तो भाई ये जो आयत है ना, इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ईसाई इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए, यहूदी इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो उनको इतना फिक्र नहीं है मुसलमानों को काफिर बनाने की, डायरेक्ट वो कोई तबलीग का काम नहीं करते यहूदी, वो ईसाइयों के जरिए से तबलीग का काम करते हैं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा, जितना उनके लिए मुमकिन होता है, साबी ये सब सितारा परस लोग, जजाकुल्ला। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, क्या वाकई जाहिरी मतलब ऐसे ही है जैसे कि हम समझ रहे हैं, या जैसे कि वो बोलते हैं इस बात को, देखो तुम्हारा कुरान कुरान खुद कह रहा है सब ठीक है, सबको बेहतरीन अजर मिलेगा, किसी के ऊपर खौफ नहीं होगा, या ऐसा नहीं, क्यों ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इस बात को बहुत ज्यादा खुद समझें और हर एक को समझाएं, अपनी औलाद से शुरू करें, अपने घर वालों से शुरू करें और हर एक को समझाएं कि ईमान की तारीफ ये है ही नहीं कि अल्लाह को मानना कि अल्लाह है, ईमान की ये तारीफ है ही नहीं कि अल्लाह ताला को अल्लाह मानना, ये है ही नहीं भाई। मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को अल्लाह मानते थे, सब मानते थे और सब मानते हैं अल्लाह ताला को, जो कहते हैं कि हम नहीं मानते वो झूठ बोल रहे होते हैं कि वो नहीं मानते, हालांकि वो भी मान रहे होते हैं, एथियस जिनको कहा जाता है, सब मानते हैं अल्लाह को, ईमान की ये तारीफ ही नहीं है, बल्कि ईमान की तारीफ तो सिर्फ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानना और नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई डेफिनेशन को मानना कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह ताला क्या नहीं है और अल्लाह ताला क्या है और अल्लाह ताला की रजा किस चीज में है और अल्लाह ताला की नाराजगी किस चीज में, ये नबी अलैहिस्सलाम से ये तारीफ लेना, ये डेफिनेशन लेना, ये अंडरस्टैंडिंग लेना, ये है ईमान लाना, ये है ईमान लाना। आपकी नई बात समझ में आ रही, ठीक है अपने बात रखें, ये है ईमान लाना। तो हादू वन नसारा वसाबीन मन आमना बिल्लाही, ये जो मन आमना बिल्लाही है ना, के यहूदी मन आमना बिल्लाही, नसारा मन आमना बिल्लाही, तो इसका मतलब ये है कि वो यहूदी जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का रसूल मान लिया और अल्लाह के बारे में सिर्फ वो बात तस्लीम करी जो नबी अलैहिस्सलाम मानते थे और उससे पहले जो उनके गलत अकायद बन चुके थे अल्लाह के बारे में, उनकी नफी कर दी, उनको रिजेक्ट कर दिया, वो वाले यहूदी फलहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये उन वाले यहूदियों के लिए है और उन वाले नसार उन नसारा के लिए है कि जो अल्लाह पर वैसे ईमान लेकर के आए जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है और उससे पहले जो वो कुछ अल्लाह ताला के बारे में गलत अकायद में मुब्तला हो चुके थे कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं नाउज बिल्ला, और जो है वो मरियम अलैहि सलाम जो है वो अल्लाह ताला की नाउज बिल्ला बीवी है या पता नहीं क्या है, और तीन में से एक है और एक में से तीन है और ये है वो, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, राइट, उनको रिजेक्ट कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम की बात मान ली, वो वाले नसारा लहुम फलहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उसी तरीके से साबिईन हो या और जो भी हो, सबके सब के ऊपर यही एक शर्त है, फलहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम वला हुम खौफुन वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। समझ में आई बात, किसी को ना समझ में आई, किसी को ना समझ में आ, ये जो आपने कलमा लिख दिया है ना शहादतें, ये हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये बात ही नहीं कर रहे, हम तो बिल्कुल कुछ और बात कर रहे हैं। इस वजह से कहा कि आप इसको तो बात समझ में नहीं आ रही, हम तो बात कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम तो कुछ और बात कर रहे हैं भाई। ठीक है चले, एक्स्ट्रा टाइम 7 मिनट मेरे ख्याल में हमारा स्टैंडर्ड है एक्स्ट्रा टाइम का कम से कम, ठीक है यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, वह आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम।